ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है, बहुत अच्छी है ना, है ना? पहले दिन आए थे उससे डबल टिबल पदम गुना बढ़ता जा रहा और ये कायम रहेगा। कहते हैं ना कि सृष्टि एक नाटक मंच है और इसमें हम कौन है, सारी कठपुतलियां माना जाता है। कई प्रश्न है, मेरा पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट क्या है, आगे क्या है, हम कहाँ से आए हैं। जैसे रोज हम टीवी में देखते हैं सीरियल, ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आदि से अंत पता चल जाता है, खत्म होता है। लेकिन इस सृष्टि नाटक मंच ये कैसे ये चक्र फिर रहा है, बहुत सारे गुह्य राज है, अभी तक नहीं पता है। आज वो क्लियर करने के लिए हमारे बीच आदरणीय रमा कुमारी क्रीना दीदी हमारे बीच है। कर्तव्य धनी से हम इनका वेलकम करेंगे। दीदी जी एक राजयोगा, सीनियर राजयोगा शिक्षिका है और बाल्यकाल से ही इस संस्था से जुड़ी है। लगभग 50 साल हो गए ज्ञान में आके और 39 ईयर्स से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की बहुत ही महीन कहेंगे महत्वपूर्ण एक फैकल्टी हो। जब शुरुआत हुआ था 1990 में तो आपने ट्रेनर के रूप में कई कई दी थी। जब शुरुआत हुई थी सबसे पहला जो था वो नागार्जुन फर्टिलाइजर और उसके बाद कई कंपनियां HPCL, BPCL, लार्सन एंड टैब्रो, ऐसे ही कई ऐसे बैंक है या अलग अलग सेमिनार्स में आपने योगदान दिया है। साथ ही आप रूरल एंड एग्रीकल्चर विंग की भी मेन फैकल्टी है, सिक्योरिटी एंड सर्विस विंग है हमारे उसके भी आप फैकल्टी है, IT विंग की भी आप फैकल्टी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड ड्रामा, तो वर्तमान समय दीदी जी की जो सेवाएं है बेसिकली दीदी पार्ला सेंटर से ही है, लेकिन वहाँ जो लोखंड वाला जगह है जिसे कहते हैं मायावी नगरी या फिल्म इंडस्ट्री एरिया है पूरा, जहाँ फिल्म जगत के कलाकार वहाँ उनके पास आते हैं और इन सब की सेवाएं दीदी जी करते हैं। तो वो जो ड्रामा है और ये एक्चुअल अपनी लाइफ का जो ड्रामा है, तो आज वो दर्शाने के लिए हमारी आदरणीय कीना दीदी हमें संबोधित करेगी। तो दीदी जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आज हम जानेंगे अपने बारे में कि कहाँ कहाँ से हम होकर के आए हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज का जो विषय है वो है मनुष्य आत्माओं का भल, मनुष्य आत्माओं के साथ सर्व प्रकार की जीव आत्माएं भी है, लेकिन पहला महत्वपूर्ण कार्य ये होगा कि हम अपने बारे में जानें, क्योंकि जितना हमारे में परिवर्तन आता जाता है उतना परिवर्तन बाकी सर्व जीवात्माओं में भी आता है। तो मनुष्य आत्माओं का अविनाशी सृष्टि का चक्र, ये आज का विषय है। आपने आत्मा का विषय सुना, परमात्मा का विषय सुना, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन और उन द्वारा प्राप्तियों का भी विषय सुना। ये टॉपिक हमें दो बातें स्पष्ट करता है। एक है समय के महत्व को जानना, वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। जैसे जैसे आपके घड़ी में 7 बजने को आया तो आपको क्या संकल्प आया आज? चलो क्लास भी चलते हैं। ऐसे सारा दिन भी आप जो जो करते हो तो आप क्या देखते हो, कितने बजे? तो समय का है महत्व, है ना? समय के अनुसार ही हम सब चलते हैं। लेकिन कई बार सारा जीवन बीत जाने के बाद जब व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने क्या किया, कैसे किया, तो कई बार उसे इतनी संतुष्टता अनुभव नहीं होती है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, जितना करना था उतना मैं नहीं कर पाया। समय की सदुपयोगता कम हो गई, क्योंकि जीवन में इतनी सारी बातें होती है, तो उस समय कई बार हमारे कर्मों की जो प्राथमिकता है वो हम खो देते हैं और काफी समय अन्य कार्यों में चले जाते हैं जहां पर इतनी प्राप्ति नहीं है, केवल हमें मजा आता है। प्राप्ति नहीं है, केवल इंद्रियों को एक कुछ ऐसा मिलता है जिससे मजा आता है। तो आज हम अभी का समय क्या चल रहा है उसके विषय में जानेंगे। दूसरा, उसी के आधार से हम ये जानेंगे कि हमारा पास्ट क्या था और हमारा आने वाला भविष्य क्या है। इंटरेस्ट है जानने में? सबसे पहले तो प्रेजेंट जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके आधार से अगर हम पास्ट और फ्यूचर को समझे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला हर कर्म पास्ट को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे, वो आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि जितना भी खेल चला, कितनी भी हमने सृष्टि की बातें देखी अभी तक युगों से, उसमें एक बात हम सबने स्वीकार की और वो है सतत परिवर्तन। कोई भी चीज युगों से जैसी थी वैसी कभी नहीं रही है, और ये परिवर्तन सतत होता है, कभी कभी नहीं, सतत होता है। हमारे एक जीवन में भी देखो कितना परिवर्तन है, समाज में भी, आदतों में भी, अपने खुद के शरीर में भी, अपने खुद के विचारों में भी, कितना परिवर्तन है। और अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। चेंज इज एन इनएविटेबल प्रोसेस। तो वो हमने स्वीकार किया है। जिनको लगता है हाथ खड़ा करे कि भाई परिवर्तन तो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो क्या विचार करते हैं? हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल, रात से दिन होता है, सूर्य भी एक तरफ से राइज होता है दूसरी तरफ से अस्त होता है, फिर हम देखते हैं मौसम बदलते हैं, है ना? फिर हम देखते हैं बीज डालते हैं तो उसमें से पूरा झाड़ निकल के आता है, फिर हम देखते हैं पानी कैसे मिलता है, सागर से बादल बनते हैं, फिर वो जाकर पर्वतों से पहले पानी बरसाते हैं, उसमें से नदियां भी बनती है, फिर धीरे धीरे शहरों तक आता है, और ये सारी नदियां जो है अंत में सागर में पहुंच जाती है। शरीर को देखो तो पहले बाल्य काल था, एकदम छोटा शरीर था, उसके बाद धीरे धीरे अंग बढ़ते गए और फिर समय आता है कि अंगों में भी परिवर्तन आने लगता है, प्रौढ़ अवस्था का अनुभव होता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था का भी अनुभव होता है। तो हम रोक नहीं पाते, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कर दो, सम थिंग्स आर इनएविटेबल। तो वो चेंज नॉर्मल है ना, अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर देखो तो श्वास का आना जाना है ना, फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, फूड का डाइजेशन देखो कैसे होता है, अब खाते क्या है, निकलता क्या है, तो हर एक प्रकार का परिवर्तन हमने देखा हुआ है ना। तो इसमें एक दूसरी बात है, जैसे ये देखो, ये चलो मैंने धरती की बात की, लेकिन जो अवकाश में है वो भी क्या हो रहा है, सारे ग्रह जो है अपने टाइमिंग अनुसार चल रहे है कि नहीं, उसमें भी है कि नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य का पूरा ऐसे चक्कर लगाती है ना, ऐसे सारे ग्रह की भी मूवमेंट है। बोलेंगे 300 साल के बाद ये हुआ है, फलाना हुआ है, ये ग्रह और ये ग्रह मिला है, ऐसे 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 सब कुछ माना चलता रहता है, हमारे इर्द गिर्द परिवर्तन है ही, हम कैसे अस्वीकार करें बताओ। हम अपनी बुद्धि से करना चाहते हैं, जैसे दुबई में बारिश नहीं आती है तो अपने मन से अपने बुद्धि से बहुत अच्छे बादल तैयार किए, क्या हुआ एक दिन, मना हम है ना प्रकृति की अगेंस्ट में जाके हम करना चाहते हैं कि वी फील वेरी सुपीरियर, और हमको इधर लाया है इस धरती पर तो हमारा काम है, हम अपनी बुद्धि का यूज करके क्या नहीं कर सकते हैं। एक होता है कि जितना हो सके अच्छे कर्म करो, वो एक बात है, और एक होता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहो, माना उसी का वो अपने को फील होता है अंदर से आकर्षण कि अपनी बुद्धि को यूज करो, बुद्धि को यूज करो, नई नई चीजें बनाओ, ऐसा बनाओ जब पहले नहीं था, दैट टाइप ऑफ अ थिंग। आकांक्षाएं बोलते हैं ना, महत्वाकांक्षाएं बोलते हैं, वो भी बहुत चलता है। तो हम देखते हैं कि उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो भी चीज, पहले तो हम देखेंगे कि हर चीज जो है एक चक्र में है, जैसे हमने देखा कि रात दिन हुआ, दिन के बाद चक्कर चला, फिर वो रात के बाद एक्सेप्टेड, जो मौसम का परिवर्तन है भले अपने आप वो चेंज होगा लेकिन हम तो देखते हैं ना सारा टाइम चेंज हो रहा है। एक मौसम भी अभी तो बदल रहा है, एक मौसम जैसे मानसून्स है उसमें भी कितना परिवर्तन हम देखते हैं, लेकिन हमको पता है कि एक दिन आएगा कि विंटर आएगा, कितनी भी बरसात हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, एक दिन आएगा जब विंटर शुरू होगा, और विंटर का एक दिन आएगा जब समर शुरू होगा, है ना, ये तो डेफिनेट है। और हम देखते हैं कि फिर से गर्मी के बाद वो कंटिन्यू होता है साइकिल, बीज में से पूरा झाड़ निकला, हर एक फल में क्या मिलता है, बीज, फिर वो बीज डलेगा, फिर झाड़ उगेगा, उसका कोई एंड है नहीं। ऐसे हमारे शरीर का देखे, सारे सिस्टम गोलाकार में ही है, श्वास का आना जाना, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन सिस्टम, सारे चक्कर में चलता है, एवरीथिंग इज इन अ साइक्लिकल ऑर्डर, इवन अवकाश में एवरीथिंग इज इन अ साइक्लिकल ऑर्डर। तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द आपके शरीर के अंदर, अभी देखिए आपने आत्मा का लेसन किया राइट, उसमें आपने मन बुद्धि संस्कार के बारे में जाना है ना, मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, फिर हम कर्म में आते हैं, उन कर्मों के संस्कार बनते हैं, ठीक है, संस्कार बन गए और कंटिन्यूअसली हम वो संस्कार बनाते जाते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन मन बुद्धि काम न करके संस्कार से ही हम कर्म के एक्ट में आते हैं, तो ये भी चक्कर चलता रहता है ना। तो एवरीथिंग इनसाइड आउटसाइड सब परिवर्तनशील है और सब एक चक्र में चलता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आत्मा का भी कोई चक्र होगा? जन्म मरण का, अगर ये सब इधर पृथ्वी पे यूनिवर्सल लॉ ही है, परिवर्तन का यूनिवर्सल लॉ ही है चक्र में घूमने का, तो आत्मा का चक्र होगा? आत्मा अनादि अविनाशी है ना, गीता में लिखा है ना अजर अमर अविनाशी, माना आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा की कभी डेथ नहीं हो सकती। लेकिन सेकंड क्वेश्चन है, आत्मा का कोई चक्र हो सकता है? जैसे हमने शास्त्र में तीन शब्द सुने हैं, सतो रजो तमो, सुना है ना, प्रकृति के हर तत्व में ये शामिल है, सतो रजो तमो। सतो मीन्स एक्सीलेंट, रजो मीन्स मिडिल में, और तमो मीन्स एकदम नीचे की स्थिति। ये हर चीज में होती है। अकाउंट्स में आप देखेंगे, उसके लिए कहते हैं लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में कोई भी चीज आप खरीदो और जब 5-6 साल के बाद बेचने जाओ तो आपको भाव उतना मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर जो हम खुद परिवर्तन करते हैं। जैसे किसी को भाड़े पे घर देना है तो कभी देखो तो एकदम भाव ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, है ना। लेकिन नॉर्मली जो नेचर के साथ संबंधित है उसमें क्या हम देखते हैं, जिसको हम टच नहीं करते हैं, उसकी साइकिल कैसी होती है? वो एकदम परफेक्ट फॉर्म से धीरे 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 अपनी वैल्यू उसकी कम होती जाती है। ये नेचर का एक लॉ है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब अपनी बुद्धि को इसमें हम लाते हैं ना, जैसे बीच में, तो हम अपनी रीति से कुछ कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पहले से बेहतर हो, पहले से वैल्यू बेहतर आए, मतलब हमारे अंदर वही एक धगस होती है करने की। तो आज हम देखते हैं कि फ्रूट्स वगैरह में इतना कुछ है नहीं लेकिन प्राइस बहुत है। ये हमारी बुद्धि है, लेकिन जो नेचर की सिस्टम है वो हर साल हर चीज की डेप्रिसिएशन होती ही है। अकाउंट्स करने वाले को तो बराबर पता है कि वैल्यू कम होगी, भले मैंने जेवर भी लिया होगा तो भी वैल्यू कम होगी, जब बेचने जाएंगे ना तब वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो न्यू, जो चीज न्यू है वो एक दिन ओल्ड बनती है, जो नई चीज है वो एक दिन पुरानी कहलाती है। आप कितने भी लाखों के घर में जाओ, एक साल बीतेगा और आप कहेंगे अरे इधर कुछ लीकेज हो गया है, अरे इधर दीवार में कोई क्रैक आ गया है, तुरंत मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है। फिर आप नहीं कह पाओगे कि ये हमारा नया घर है। एक बार काम शुरू किया, अपना हाथ लगा, फिर वो नया नहीं रहता है। और एक दिन आता है हमको लगता है अब इस घर में हम नहीं रह सकते, हमको दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। तो हर चीज में लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन इस यूनिवर्स में है, अर्थ पे, पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, इफ इट इज अप्लाइंग टू एवरीथिंग, हर चीज को वो अप्लाई कर रहा है, तो क्या मुझे अप्लाई नहीं करेगा? पर हम कभी अपने बारे में सोचते हैं? कभी अपने लिए अपॉइंटमेंट ली है? सारा टाइम कार्य में, संबंधियों में, साधनों में, उसी में हम मस्त रहते हैं। कभी हमने अपने लिए अपॉइंटमेंट नहीं ली और नहीं पूछा कि अच्छा आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील. जैसा बचपन में महसूस होता था अभी महसूस होता है, क्या क्या परिवर्तन आया, तो आप अपने आप को परसेंटेज दे पाएंगे. समझा ना, किसमें, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस, इन सब में आपको परसेंटेज देना है, क्योंकि उसी आधार से बिहेवियर होगा. आप कितना भी दूसरों के सामने अच्छे से अच्छा बिहेवियर करेंगे, लेकिन जब आप अकेले होंगे तो आप अपने ओरिजिनल पर आ जाएंगे, जो आप वास्तव में है. तो वो जो है हम कभी भी नोटिस नहीं करते हैं. कल सुबह के कार्य के लिए हम अपना दिन पूरा कर लेते हैं. सो हम लोग ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड ऐसे हो गए हैं. अगर हम अपने आप को महसूस करेंगे तब पता चलेगा कि चलो मैं इतना बाहर कर रहा हूं, मैं अपने लिए क्या परिवर्तन करूं, वो फीलिंग आपको आएगी. लेकिन युगों से ये सब्जेक्ट, भले शास्त्र हमको मिले, सब कुछ मिला, रिसोर्सेज मिले, लेकिन हमने कभी अपने दृष्टिकोण से कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा. हमने हमेशा सोचा ये अर्जुन की कहानी है, राम की कहानी है, कृष्ण की कहानी है. किसी ने नहीं बोला ये मेरी कहानी है. सच बात है कि झूठ है ना. तो दिन प्रतिदिन अशांति क्यों बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन असंतुष्टता क्यों बढ़ती गई, कुछ तो कारण होगा ना. आपने कभी ये देखा है स्वस्तिका? उसके पहले एक और चीज बताना चाहती हूं. ये साइंस ने बताया है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइंस ने डिस्कवर किया है. नहीं तो आप बोलेंगे ये तो सब ब्रह्मा कुमारीज बोलते हैं. साइंस ने भी बोला है कि कोई भी क्रिएशन ऑर्डर से केओस की तरफ जाती है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एंथ्रोपी. जैसे आपने बॉल फेंका, उछाला, तो सबसे पहला जंप सबसे ऊंचा होगा, उसके बाद छोड़ दो, आप टच नहीं करो उसको, तो धीरे धीरे उसका जो फॉल है वो छोटा होता जाएगा. लास्ट में एक टाइम ऐसे आएगा जमीन को बस टच ही किया और आपको फिर उसको उठाना पड़ता है. अपने आप वो बॉल उठेगा नहीं. फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको उछालेंगे, तो फिर उसको सबसे बड़ा जंप मिलेगा. बराबर है ये? तो ये सारी चीजों के लिए होता है इस संसार में. एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम ऑर्डर एंड रीचेस टू केओस. आप ले लीजिए बैटरी का एग्जाम्पल, ले लीजिए सेल बैटरी. आप जब खरीदते हो तो आपको कैसी बैटरी चाहिए? खाली चलेगी, आधी चलेगी, कैसी चाहिए? पूरी चाहिए. तो हर चीज नई जो होती है वो कैसी होती है? परफेक्ट, फुल. तो हम जब धरती पर आए होंगे पहले पहले हम कैसे होंगे? सचमुच आज तो हम कितना अपने लिए नीचा सोचते हैं, अपने लिए कितना नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं. हम थोड़ी ऐसे आए थे. हम कैसे आए थे? फुल. वो लॉस्ट किया है हमने. लॉस्ट नहीं किया, वो एक साइकिल में हम चलते रहे जिसमें वो परिवर्तन आता गया. तो इंपॉर्टेंट है साइकिल को समझना, है ना. हमारे से जुड़ा है, आप एक एक से जुड़ा है, हम कोई थियरी नहीं बता रहे हैं, एक एक से जुड़ा है. तो आपको अपने लिए ये बात समझनी होगी. लास्ट में जब बॉल को ऐसे उठाते हैं उसको कहते हैं लॉ ऑफ नेगोन्ट्रोपी. माना जो केओस है उसको फिर से ऑर्डर में लाना. कौन लाएगा? देखो डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो क्या केओस को ऑर्डर में लाता है या रिपेयरिंग करता है? रिपेयरिंग करता है। ऐसे हर व्यक्ति हर फील्ड में केओस को रिपेयर करता है कि केओस को ऑर्डर में लाता है? अभी जो ब्रिज टूटा उसको क्या करेंगे, ऑर्डर में लाएंगे या रिपेयर करेंगे? माना क्या मनुष्य के अंदर शक्ति है जो केओस को पूरा ऑर्डर में ला सके? तो फिर ये किसका काम है जो हमें उठाए और फिर हमें परफेक्शन की ओर ले जाए? होना चाहिए ना कोई, तो वो पहचान भी इंपॉर्टेंट है। पर हम इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, पूरा उसका काम नहीं है, हम इन्वॉल्व है, कनेक्शन है। अगर हम साथ नहीं देंगे तो नहीं होगा। पर प्रकृति को मालूम है कैसे हैंडल करना है। दूसरी टीचर जो है ना इस निगोंथ्रोपी इफेक्ट के लिए, वो प्रकृति है। अगर हम फिर भी नहीं मानते हैं ना तो प्रकृति कर लेती है। उसको तो चेंज होना ही है, प्रकृति को तो। हम कितना भी ना बोले आई एम ओके आई एम ओके आई एम ओके, कल देखेंगे परसों देखेंगे, प्रकृति नहीं सुनती है। प्रकृति अपने टाइम पे चेंज लाएगी, माना लाएगी, और वो आपको बता के नहीं आएगी, वो अपनी रीति से करती है। माना ये नेगोंथ्रोपी इफेक्ट भी हमको सामना तो करना पड़ेगा। वी हैव टू सी, वी हैव टू विटनेस, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। अपने स्वस्तिक का देखा है ना, हर ऑस्पिशियस शुभ कार्य में हम क्या करते हैं, स्वस्तिक का ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमने कभी पूछा ये स्वस्तिका का अर्थ क्या है? बस ड्रॉ कर दिया, उसके बीच में चार बिंदी लगा दिए, उसके ऊपर राइस के दाने रख दिए। हमने पूछा, और राइस के दाने भी कैसे रखते हैं ऐसे ऐसे? स्वस्तिक माना पूरे सृष्टि के चक्र में स्व की स्थिति। स्वस्तिक माना पूरे सृष्टि के चक्र में स्व की स्थिति, इसलिए बिंदु बताया है। बिंदु इज फॉर सोल, आत्मा, और ये एक है लेकिन रिप्रेजेंट्स एवरीबडी, क्योंकि फिर उसके ऊपर वो दाने फेंकते ना, माना एक आत्मा के पीछे अनेक आत्माएं आती है, एक से थोड़ी काम चलेगा। और सबसे पहले हम हाथ कहां पर ड्रॉ करते हैं स्वस्तिका का? राइट, जर्मनी को छोड़ो, हम क्या करते हैं भारत में, राइट साइड से शुरू करते हैं, है ना। तो राइट साइड पे क्या लिखा है, एक हाथ है, ऐसा ऐसा हाथ होता है ना, हम कैसे क्यों करते हैं ऐसा हाथ किसी पर, आशीर्वाद देने के लिए। तो जो शुरुआत है क्योंकि वो ऑर्डर वाला है इसीलिए उस पे आशीर्वाद का हाथ है। अगर कोई बच्चा घर में एकदम ऑर्डर डिसिप्लिन राइट वे में चलता है तो उसको रोज माता पिता से क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जो नॉटी होता है, वो हमेशा शैतानी करता है, उसको माता पिता को रोज करेक्ट करना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है, आशीर्वाद तो बात की बात है ना। तो इसीलिए स्वस्तिक जैसे राइट साइड से शुरू होता है और हाथ ऐसा है, वो आशीर्वाद का हाथ है। माना शुरुआत सृष्टि के चक्र की किस चीज से होती है, आशीर्वाद से होती है, क्योंकि सब कुछ ऑर्डर में होता है। फिर समय बीतता है, आप इसमें घड़ी भी देखिए, अपनी घड़ी होती है ना 24 घंटे की, वो आप स्वस्तिक पे रख दीजिए। अब वो जो कांटा है वो 12 बजे से क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा। तो जब वो 12:15 पे आता है तो थोड़ा समय चक्र का बीतता है, तो उसके बाद जो आशीर्वाद का हाथ है वो है, अभी भी आशीर्वाद है लेकिन हाथ का पोजीशन बदल गया, जो सदा ऐसा था ना वो नहीं है। फिर भी ब्लेसिंग्स है। फिर जब घड़ी 12:30 पर आती है तो उस समय हाथ क्या होता है, लेफ्ट साइड टर्न हो जाता है और उठ रहा है उठ रहा है, पहले ऐसे था अभी ऐसे हो रहा है। तो उस समय ब्लेसिंग्स बहुत रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी यहां से आरंभ होती, क्यों आरंभ होती वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन आप इतना देखिए कि नेगेटिविटी आरंभ होती है। माना दिन जब पूरा होता है तो रात शुरू होती है, तो आत्मा का दिन माना ब्लेसिंग्स, आत्मा की रात माना नेगेटिविटी शुरू। ठीक है, सब अंदर से ही हो रहा है। जब 12:45 बजता है तब वो हाथ ऊपर उठता है, और हमारा हाथ गुस्से में कब ऊपर उठता है, किसी को मारने के लिए, ऐसे वो समय इतनी नेगेटिविटी है कि किसी को भी आशीर्वाद का अनुभव ही नहीं होता। और हम इसी समय ना सबसे आशीर्वाद बहुत मांगते रहते हैं, प्लीज हमें आशीर्वाद दे दो, प्लीज हमें आशीर्वाद दे दो, उनको लगता है मेरे से कुछ नहीं होगा, बट ये आशीर्वाद देंगे ना तो कुछ हो जाएगा। मैंने एक थॉट आ जाता है अपने अंदर कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। पहले तो क्या होता था, एक रिगार्ड होता था, भाई बड़े हैं या मंदिर में जाते हैं या कोई ऐसे गुरु है तो हमको अब झुक के उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आशीर्वाद दे दो ताकि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दे दो मेरा अच्छा हो जाए, हम खुद नहीं कर पाते हैं इतनी नेगेटिविटी के कारण। अभी आप इधर आए हो तो आपको क्या फील हो रहा है ये एनवायरनमेंट में, नेगेटिव थॉट्स कितने आए? कोई कहेगा मेरे को आया ही नहीं, कोई कहेगा बहुत कम आया। स्वप्न आए किसी को बुरे, एकदम बुरे स्वप्न नहीं आए? क्यों? एक पॉजिटिव वातावरण मिला, आप भूल गए ना घर बिजनेस ये वो। हम पहले पहले आते थे ना तो हम तो मोबाइल तो होता नहीं था, हम फोन ही छोड़ देते थे, कॉन्टैक्ट ही नहीं होता था बाहर दुनिया से। अभी तो मोबाइल है इसीलिए हर एक लिबर्टी ले लेता है, चलो एक बार घर फोन करके बात करता हूं। पहले आते थे ना मन ही नहीं होता था, सोचते बस इधर ही इधर रहे बस मन बुद्धि, ऐसा होता था। वो भी चेंज आता है, देखो पहले जो हम आते थे और अभी आते हैं उसमें बहुत फर्क है। तो ये जो है ये हाथ उठता है नेगेटिविटी का पूरा सबके ऊपर। अगर कोई सच्चाई से फॉलो करने वाला होगा ना, और अगर वो नया ऑफिस ज्वाइन करता है 2 साल के अंदर इतना बेचारा डिप्रेस हो जाता है, या तो उसको नेगेटिविटी यूज करने की आदत पड़ जाती है कि नहीं यहां सच्चाई तो चलेगी नहीं तो मुझे तो कोई रखेगा ही नहीं, है ना, कॉम्पिटिशन ये वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये समय में ऐसा होता है, टोटल नेगेटिविटी। अब जब 12:45 हम 1 बजे पर आएंगे, घड़ी तो चलती रहेगी कि रुकेगी? चलती रहेगी। जब हम 1 बजे पर आएंगे तब क्या होगा, नेगेटिविटी का मिलन पॉजिटिविटी से होगा। महाभारत बिटवीन पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। लेकिन वो पॉजिटिविटी की याद कौन दिलाएगा? जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्जिंग में रखना पड़ता है, तो उसका कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो मेन पावर हाउस से करंट आता हो, नहीं तो कोई यूज नहीं। ऐसे यहां पर इतनी नेगेटिविटी, अब मुझे अपने आप को चार्ज करना है तो मुझे ऐसे सोर्स चाहिए जहां से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिले। थोड़ी पॉजिटिविटी से वो नेगेटिविटी से मेरी तो हार ही हो जाएगी, मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन हारेंगे बहुत अच्छा रहना भी इतनी नेगेटिविटी में काम नहीं आता है। इसीलिए हमको अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का समय ये समय है, जिसमें घड़ी अभी भी टोटल समझो 12 से शुरू हुआ ना 12 में 2 मिनट का टाइम है। अब ये समय है महापरिवर्तन का, बिकॉज द वन साइकिल हैज फिनिश्ड नियरली वन साइकिल। पर ये साइकिल कोई स्टॉप कर सकता है? भगवान कर सकते हैं? इटर्नल किसको बोलते हैं? अविनाशी, जिसमें भगवान भी इस साइकिल को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि भगवान ऐसी हस्ती है जो ये सारे चक्र को आराम से साक्षी होके देख रहा है, माने उसको एक एक मूवमेंट का ज्ञान है, और हम केवल प्रेजेंट में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, सारा नहीं, और पास्ट का हमारे अंदर बहुत, हम क्या कहेंगे, बैड मेमोरीज का स्टॉक ज्यादा होता है, गुड मेमोरीज मर्ज हो जाती है और फ्यूचर की चिंता ही रहती है हमको। इसीलिए हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, जो साक्षी होकर के सारे इस चक्र को उसने देखा है, वो एक एक मोमेंट जानता है। तो जब हम ऐसी पावर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा केओस जो है वो धीरे धीरे किस तरफ जाएगा? ऑर्डर की तरफ जाएगा। अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव मेथड है तो आप बता सकते हो कि हम केओस से अपने आप को ऑर्डर में कैसे ले जाए। यूनिटी तो नंबर वन चीज है ही नहीं। एक ये सोचता है तो दूसरा वो सोचता है, यूनिटी नहीं होगी तो फिर ये प्रोसेस कैसे होगा, है ना? तो यूनाइट करने वाला भी जो एनर्जी लेवल है वो केवल हमको जो फुल होता है हमेशा परमात्मा, वो उनसे ही मिल सकती है। और ये प्राउड फीलिंग की बात है, ये कोई मजबूरी हेल्पलेसनेस की बात नहीं है, केवल उसके पास है हमको चाहिए तो हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्राउड मोमेंट, इट्स एन मोमेंट ऑफ ऑनर कि हम परमात्मा से कनेक्ट होकर के अपनी शक्ति को ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर आप दूसरी तरीके से देखो तो गर्व की बात है। अगर आप 2 मिनट भी मोदी जी से मिले या 2 मिनट भी आपके हीरो से आप मिले तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है ना? तो ये तो परमात्मा माना द हाइएस्ट हीरो है इस सृष्टि चक्र का, तो आप मिलेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? बहुत अच्छी, बेस्ट फीलिंग आएगी, है ना? तो इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं है, इसमें आत्मा का, परम आत्मा के साथ कनेक्शन की बात है। तो अगर हम वो पहला पीरियड देखें जो ऑर्डर से शुरू हुआ, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी वातावरण में हमारे अंदर? तो सारी आत्माएं जो है अपनी पवित्रता के हाईएस्ट पीक पर होगी, आत्मा प्योर होंगी जो भी होंगी। आज कितना पॉपुलेशन है? 800 करोड़ से ज्यादा। तो आत्माएं जो उस समय पूरी प्योरिटी के लेवल पर होंगी, क्या 800 करोड़ होंगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दुख का कारण है। तो ऑर्डर में तो दुख है नहीं ना, ऑर्डर माना ऑर्डर, उसमें दुख लेश मात्र नहीं हो सकता। तो इसीलिए आत्माएं अपने पवित्रता के हाईएस्ट पिनिकल पर होंगी। दूसरी बात, उनको सपोर्ट करने वाले ये जो 5 तत्व है वो कंप्लीट प्योर होंगे, सतोगुणी, हर चीज आपको भरपूर देगी और आपको दुख कभी नहीं, उसमें उपद्रव कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो भी ऑर्डर में है। सतो प्रधान आत्माएं, सतो प्रधान प्रकृति चारों ओर। फिर इसके कारण आप देखेंगे सारी खानियां, खान होती ना, खान माइंड, वो सारे भरपूर होंगे, भरपूर। आपको इतना अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने के लिए। तो इतनी संपन्नता होगी हरेक के पास कि कोई गरीब शब्द होगा ही नहीं, समझा? पुअर, पॉवर्टी, गरीबी ये सब कुछ बिल्कुल शब्द ही नहीं, डिक्शनरी नहीं होगी सबसे पहले तो, कि हम कुछ सोचे ऐसा। संपन्नता, चारों ओर संपन्नता होगी। तीसरा, वह एजुकेशन होगा लेकिन पास्ट का नहीं, हमारी हिस्ट्री और ये सब, ज्योग्राफी कैसे बनी, फलाना कैसे हुआ, साइंस कहां से शुरू हुआ, ये सब नहीं। उसी समय का वहां का प्रैक्टिकल एजुकेशन होगा, माना आर्ट्स ज्यादा होंगे, कॉमर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, आर्ट्स ज्यादा होंगे। साइंस तो अपने एकदम प्योरेस्ट लेवल पर होगा, प्योरेस्ट लेवल, माना वो साइंस बॉम्ब बना ही नहीं सकता, अच्छे से अच्छा ही बनाएगा। तो साइंस होगा, आर्ट्स होगा, कॉमर्स जैसे आज ऐसे नहीं होगा, लेकिन पहले नहीं बाटर सिस्टम था अपने पास, कि कोई गेहूं लेके आता था तो सामने वाला चावल देता था, ऐसे यहां पर है ना फ्रेंडली शेयरिंग होगी। जैसे हम एक दूसरे से मिलने जाते हैं तो हमको लगता है चलो ना थोड़े फ्रूट्स लेके जाते हैं, चलो ना थोड़ा ये करके जाते हैं, ये ले, खाली हाथ जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई फ्रेंड के वहां गए, रिलेटिव के वहां गए। तो ऐसा गोल्डन एज में होगा, वो गोल्डन एज कहलाता है, पहला ऑर्डर वाला जो स्पेस है उसको गोल्डन एज कहते हैं। और वो जो कांटा दिखाता है ड्यूरेशन का, वो है 1250 वर्ष। 1250 वर्ष में परफेक्शन, पूरा ऑर्डर से हम लाइफ को देखेंगे। आप देखेंगे? आपको क्या लगता है, आप देखेंगे? वो देखेंगे ना, हाँ, कि हम सब ऑर्डर से आगे आए हैं। तो इसीलिए हमने प्रॉस्पेरिटी का भी बहुत अनुभव किया है, साथ में एजुकेशन आज का होगा। फिर चौथा है कि सब अपना अपना रोल बजाएंगे, वहां पर भी सब अपना अपना रोल बजाएंगे, सर्वेंट भी होगा, सब कुछ होगा, माली भी होगा, सब रोल होंगे, सब रोल होंगे। लेकिन ये अपनी रचनात्मकता को यूज करने के लिए होगा। कोई ये नहीं फील करेगा मैं इसके अंडर में काम कर रहा हूं, लेकिन अपनी रचनात्मकता को यूज करने के लिए हर एक रोल बजाता होगा। फिर बिजनेस है लेकिन शेयरिंग, कोई भी पैसे से ट्रांजैक्शन डीलिंग नहीं होंगी, पैसा तो मना होगा ही नहीं, वो बाद में द्वापर युग में हमारे, आपको लगता है कोई विशेष धर्म या ऐसा कुछ जरूरत होगा कि धर्म अंदर ही है, हम धार्मिक समझा, अपना बिगिनिंग अशरफियों से भी नहीं हुआ है, बियॉन्ड दैट। ये है पूरा ऑर्डर सोसाइटी में। पैसे का मूल्य कितना? जीरो, जीरो। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का मूल्य कितना? 100%। इसलिए वहां अनकंडीशनल प्यार है, प्रेम पे कोई कंडीशन नहीं है, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा ये प्रकार का प्रेम नहीं है, लेन देन का नहीं, बस देने वाला प्रेम है, हर एक देने का भाव रखता है। और इसीलिए सब होते हुए ना हर एक प्रकार की जाति भी होंगी, प्राणी होंगे, पशु होंगे, सब सॉरी पक्षी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कैसा होगा, अपने आप में मिला, मिलने का भाव होगा, मनोरंजन का भाव होगा, किसी से कोई भी प्रकार का भय नहीं होगा। तो वहां शेर भी होगा लेकिन डर नहीं होगा, वो बिल्कुल जैसे आजकल हम कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, ऐसे वहां होगा। और सब एक जैसे होंगे, प्राणी भी कोई एक दूसरे से डरे के नहीं, और कोई एक दूसरे पर खाने के लिए निर्भर नहीं होंगे, है ना। तो इस रीति से सब लॉ एंड ऑर्डर से नेचुरली चलेगा, वहां कोई नियम लिखे हुए नहीं होंगे, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना सारे नियमों का, ऐसे सतयुगी दुनिया में, गोल्डन एज में, कोई ऑर्डर का कोई लॉ सिस्टम ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि हर एक के अंदर होगा। उसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम किसके लिए बोलते हैं ऐसा? मर्यादा पुरुषोत्तम किसके लिए गाया हुआ है? राम राज्य और कृष्ण के लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऐसे हम ऐसे होंगे, अहम भी, हम तो केवल कृष्ण और राम के लिए ऐसा गाते हैं, लेकिन हमारा भी वही क्वालिटी है, तो हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। फिर मना सतो प्रधान, पूरा एनवायरमेंट भी है और आत्मा भी सतो प्रधान है, इसीलिए कहा जाता है 100% आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस। तो हमने कहां से शुरू किया अपना अपनी जीवन की यात्रा, जन्म मरण की कहां से शुरू की? सोल कॉन्शियस 100%। हम सोल कॉन्शियस में ही जीते थे, शरीर था, कार्य था, सब कुछ था, साधन तो A1 थे, लेकिन हम कैसे जीते थे? सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी। आत्माभिमानी माना क्या? आत्मा में जो शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है, सुख है, पवित्रता है, ज्ञान है, वो सब इतना पावरफुल है ना कि बस उन्हीं भावनाओं से हम जीते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है, न अपने शरीर पर, न अपने संबंधी पर, न प्रकृति के कोई भी साधन पर निर्भर नहीं है। वो आत्मा की सेवा करने के लिए आते हैं कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। आत्मा के अंदर से इच्छा नहीं आती है, सुना? हमको आज इच्छा होती है ना एड देख के, मुझे ये फ्रिज चाहिए। जब हम सत्व प्रधान होते हैं वो इच्छा की बात ही नहीं है, सब अपनी सेवा में रेडी होते हैं, हमको इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सुना एक, इच्छा मात्रम अविद्या, माना इच्छा की अविद्या है, नॉलेज ही नहीं है कि इच्छा किसको कहते हैं। दिस इज द संपूर्णता ऑफ आत्मा। हमने अपनी जर्नी अगर शुरू की, कहां से शुरू की पता है ना? तीन लोक का चित्र सुना ना, कि हमने कहां से आरंभ किया? अपने घर से, परम धाम, आत्मा, परम धाम से हमारी यात्रा आरंभ होती है। और फर्स्ट सीन हम जो देखते हैं वो है सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्ग, बहिष्ठ, हेवन। और आत्माएं सबसे शुरुआत करती है ऑर्डर से, फिर समय बीतता है थोड़ा थोड़ा, और क्वार्टर भाग माना 1250 वर्ष के बाद हम एक दूसरे पीरियड में आते हैं। अब देखिए, जो सतयुग में आत्माएं आई वो सब पहले जन्म में आई ऐसा तो नहीं होगा ना, थोड़े पहले जन्म में आए होंगे, फिर सेकंड जन्म से भी वृद्धि होती जाएगी क्योंकि बच्चे होंगे ना, तो वृद्धि होती जाएगी। वो बच्चे एक्चुअली आत्माएं तो परमधाम से ही आएंगी और माँ बाप के द्वारा गर्भ पैदा होगा, उसमें वो आत्मा आएगी और उनका जन्म होगा, तो आत्माओं की वृद्धि होगी संसार में। तो सतयुग तक जितनी भी आत्माएं आनी थी परमधाम से, उतनी सतयुग तक आ गई, ठीक है? आपको जन्म का ज्ञान कल के लेसन में मिलेगा, आज मैं केवल स्थिति का बता रही हूं कि आत्मा की स्थिति क्या होती है। तो आत्मा जो है सतो सामान्य स्टेज पे आती है सेकंड पीरियड में, सतो सामान्य। अब जो आत्माएं सतयुग में थी वो तो टाइम अनुसार त्रेता युग, सिल्वर पीरियड में एंटर होती है। त्रेता युग माना, त्रेता माना त्रुटि, त्रुटि इन परफेक्शन, जो परफेक्शन थी वो उसमें ब्रेक आ गई। समय के अनुसार आत्मा शक्ति तो यूज करेगी ना, लेकिन चार्जिंग नहीं है, केवल यूसेज है, पर इतनी कम रीति से यूसेज का अनुभव होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे में परिवर्तन आ रहा है। आज हम बात करते भाई हम कितने दुखी, हमारे तो दादा दादी इतने सुखी थे, यू कैन कंपेयर आज, पर सतयुग में ऐसा नहीं है। तो जब सतयुग परिवर्तन होके सतो सामान्य सिल्वर पीरियड त्रेता युग में आते हैं, तो परम धाम से सीधी त्रेता युग में आत्मा आने वाली भी होती है, तभी तो वृद्धि होगी ना। उन्होंने सतयुग देखा ही नहीं है। जो सिल्वर एज में आएंगे डायरेक्ट, उनका तो सतयुग मिस हो गया और वो सिल्वर पीरियड में आएंगे। अब जैसे जैसे सिल्वर पीरियड में ज्वाइन होते जाएंगे, तो जो सिल्वर, इसीलिए आते ही सिल्वर पीरियड के ड्यूरेशन में वो आत्माएं सतो सामान्य, तो आत्माएं अपने स्वधर्म में जीती है यहां, फिर बाद में धर्म में भी परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सिल्वर पीरियड में क्या होता है, सब एकदम एक समान है जैसे सतयुग में था, और वातावरण भी बिल्कुल सतो सामान्य है, लेकिन उसमें इतना फर्क महसूस नहीं होगा। सोल कॉन्शियस जो परफेक्ट थे उसमें से थोड़ा कमी आएगी, जैसे चांद समझो पूनम का है, उसके बाद 16 कला से 14 कला होता है, बस उतना परिवर्तन त्रेता युग में होगा। ये दोनों मिलके धरती पे स्वर्ग कहा जाता है। इससे जब व्यक्ति मरता है तो हम क्या कहते हैं उसके लिए, स्वर्ग पदारा। हम वो स्वर्ग याद करते हैं जहां कोई दुख का नाम निशान नहीं होता है, सुना, और इसलिए हम कहते हैं हां अभी वो स्वर्ग गया। तो कहां से गया है ना, वो नहीं सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला कि वो स्वर्ग गया, यहां स्वर्ग नहीं था क्या, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा क्या, और वो भी कर्म अनुसार। लेकिन हम विश तो यही करते हैं कि वो स्वर्ग में गया हो, लेकिन यहां हमको आके पता चला कि नहीं, जो सृष्टि चक्र का आधा समय है वही स्वर्ग है। हम सब स्वर्ग में जीते थे, हमारे समाज जो है वो स्वर्ग था, सच्चा राम राज्य। और कृष्ण राम की जो हम बातें करते हैं वो दोनों भी इसी समय आए हुए थे, सतयुग और त्रेतायुग। लेकिन शास्त्रों में तो रावण भी दिखाते हैं, कंस भी दिखाते हैं, फिर दुख तो आएगा ना। रियलिटी ये है कि सतयुग और त्रेता में कोई असुर नहीं है, असुर जैसा कोई नाम ही नहीं है, मनुष्य जैसा कोई नाम ही नहीं है, उल्टा देवी और देवता कहलाते थे। स्त्री को क्या बोलते थे, देवी जी, पुरुष को कहते थे देवता, समझा। जैसे अभी तक भी थोड़े साल पहले कोई सभा को एड्रेस करते थे तो क्या बोलते थे, देवियों और सज्जनों, सज्जनों, हाँ, पर बोलने में ऐसा आता है ना, क्योंकि स्वर्ग में हम सचमुच देवियां और सज्जना सज्जन थे, उसकी याद में हम ऐसा एड्रेस करते, दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्ट गिवन टू ह्यूमन बीइंग्स, देवी और देवता। आज तो हम केवल मंदिर में उनकी जाके पूजा करते हैं, हम तो भूल ही गए कि मनुष्य ही देवी और देवता कहलाते थे, और हम ही उस प्रकार से सतयुग और त्रेता में जिए हुए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे में स्टोरी ने क्या पलटा खाया, क्योंकि आत्मा रोल बजाते बजाते जितने भी आए त्रेता एंड तक, जितने भी आए, आत्मा की एनर्जी की लेवल 50% की हो गई यूसेज की, और उस अनुसार प्रकृति के 5 तत्व भी वैसे ही परिवर्तन होने लगे। नेचुरल रूल है ये, किसी ने किया नहीं है, नेचुरल है। फिर उसके बाद जो है वो जब समय आया, जब 50% एनर्जी लेवल कम हो गई, तो फिर एक टर्न आया, आत्मा ने पहली बार अपने शरीर पर ध्यान दिया, पहली बार उसको एहसास हुआ कि ये भी कुछ है और ये मेरा आधार है, ऐसी फीलिंग आई उसको कि ये मुझे मदद करता है। और फिर ध्यान कहां गया, देह पर। जैसे ध्यान देह पर गया तो देह की तरफ सबसे पहले आकर्षण उत्पन्न हुआ, आकर्षण से इच्छा उत्पन्न हुई, याद रखना ये। पहले देह भान में आए, उससे आकर्षण हुआ, आकर्षण से इच्छा उत्पन्न हुई। अब इसमें भगवान का तो कोई रोल है ही नहीं। हम कहते हैं भगवान ही ऐसा कराता है, भगवान ही ऐसे दुख देता है, भगवान है कहाँ यहां? हम आत्माएं अपना खेल कर रही है। सो देयर इज नो रोल ऑफ गॉड इन दिस। ये आत्माओं का खेल है प्रकृति के साथ। तो जब हम द्वापर में एंटर होते हैं, जो थर्ड लेवल है, जिसको कॉपर पीरियड बोलेंगे, जिसको द्वापर बोलेंगे, द्वा द्व द्वंद हो गया ना आत्मा और शरीर के बीच में, कंफ्यूजन कि मैं कौन हूं, ये हूं कि ये हूं, तो इसीलिए शरीर का भान आरंभ हुआ। और यहां पर जैसे हम कहेंगे कि हेल और हेवन का एक संगम हुआ, जहां से हेल की शुरुआत हमें पता ही नहीं चली पर होने लगी। The awareness attraction towards body. तो soul consciousness तो reduce हो गया, आत्माभिमानी स्थिति reduce हो गई। उसे क्या हुआ, बीज में जब कमजोरी आती है ना तो कीड़े आरंभ होते हैं। और इसीलिए जो हमारे विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो विकार है, वो उत्पन्न होने लगे आत्मा के अंदर। जैसे सुदेश दीदी जी कहा, जहां प्रकाश नहीं है वहां क्या है, अंधेरा है। अंधेरे का अपना सोर्स नहीं है, लैक ऑफ लाइट अंधेरा है। ऐसे ही लैक ऑफ एनर्जी इन द सोल, विकार उत्पन्न होते हैं अपने अंदर, इमर्ज होते हैं, काम क्रोध। माना समझो जो अनकंडीशनल प्यार था उसकी जगह काम की वृत्ति, हर चीज से इच्छा होने, अनकंडीशनल नहीं रहा। अगर थोड़ी अशांति लग रही है तो शांति की कमी के कारण लग रही है। अगर आपको लोभ आ रहा है अंदर से, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वो जो है पहले जितनी हमारी बड़ी दिल थी, हमारा जेनरस नेचर था, हमारा दानी स्वभाव था, देने का था, वो कम हो गया, इसीलिए लोभ शुरू हुआ। ऐसे मोह, ऐसे अहंकार, अहंकार ना फिर हम देखने लगे, अरे मेरा महल है, मेरी चीजें हैं, मेरा इतना राज्य है, वो देख करके हमको अहंकार आ गया। साधनों का, जितने भी साधन थे उसका अहंकार आता है, आत्मा को अपना अहंकार नहीं आता है। शरीर और शरीर के साधनों को देख करके आत्मा को अहंकार उत्पन्न होता है कि ये मेरा है और फिर मैं हूं ये सब। तो वो जो मैंपना है ना, वो अहंकार है। जब मैं आत्मा हूं कहती हूं तो इसमें अहंकार नहीं है, शुद्धता है। लेकिन जब मैं कहती हूं मैं मां हूं, मैं इतने बच्चों की मां हूं, मैं इतने मिल मालिकों का मालिक हूं, मैं इतने गज जमीन का मैं ओनर हूं, वो उसमें फिर अहंकार आता है। समझा ना, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। तो उसके बाद बॉडी कॉन्शियस के आधार पर हम सब में डिफरेंस देखने लगे। कोई थोड़ा काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई गरीब है, ये सारे जो दृष्टिकोण है ना, ये सारे वहां से उत्पन्न हुए जब हम देह को देखने लगे। आंखों ने तब से धोखा देना शुरू किया, देह और देह के संबंधित चीजों को ही हम देखने लगे। फिर एक ओनरशिप की अवेयरनेस आने लगी, जिससे क्या हुआ कि एक नेगेटिव फीलिंग आई कि मुझे इससे ज्यादा रहना है। सामने वाले को भी लगा कि इससे मेरे से ज्यादा क्यों किया, मुझे उससे ज्यादा करना है। उसमें धीरे 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 ना लड़ाइयां उत्पन्न हुई, एक दूसरे का छीनने का जो संकल्प शुरू हुआ उसमें लड़ाइयां उत्पन्न हुई। या सोचो कि मेरे को अपना प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई शुरू हो गई कि ये कोई मेरा छीन न ले, ऐसे लड़ाई शुरू हुई। और ये इसमें वातावरण कैसा हो गया, रजो प्रधान, माना अनराइटियस। हाथ स्वस्तिक का उल्टा हो गया, आत्मा को दुख अशांति का अनुभव आरंभ हो गया। कारण क्या था? आत्मा के अंदर की एनर्जी की लेवल कम होती गई और चार्जिंग नहीं था। आप देखिए, आप कोई भी सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु के पास जाओ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वापस घर आके हम क्या बोलते हैं? फिर इधर आ गए, फिर इसी झंझट में आ गए, फिर वही स्ट्रेस हो जाता है। लोगों को शनिवार रविवार बहुत पसंद आता है, लेकिन सोमवार को फिर वो स्ट्रेस होता है, क्योंकि चार्जिंग नहीं है, खाली एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो वातावरण ऐसे करके द्वापर युग का वातावरण हमें बदल देता है, हम आत्माएं बदल लेती है, और इसका प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता है। प्राणियों की भी वृद्धि होती है और प्राणी की क्वालिटी भी बदलने लगती है, क्योंकि आत्मा ही रजो प्रधान है, तो प्राणी भी कैसे होंगे। तो जो प्राणियों की क्वालिटी जो हिंसक हुई ना, वो कहां से हुई? द्वापर युग से। फिर प्राणी हिंसक होने लगे, तो नेचुरली एक दूसरे का प्रभाव है ना। तो हमको भी फिर क्या इच्छा हुई? हम भी तो चखे ये कैसा लगता है, हम भी तो ये चखे कैसा लगता है। तो हमारा खान पान बदल गया धीरे धीरे, है ना। तब तक क्या था मालूम है? कि जिस एरिया में खाली बर्फ है, खाली बर्फ और कुछ नहीं, तो वहां जो लोग रहते हैं ना, उनको एस्किमोस कहते हैं, वहां जो लोग रहते थे उन, और बहुत कम लोग रहते थे, 1% भी नहीं, उनको वहां कुछ नहीं मिलता था सिवाय मछली के, तो वो लोग क्या खाएंगे? पर एक बॉम्बे शहर में, अहमदाबाद शहर में, या भारत के कोई भी शहर में, सिटी में सब कुछ मिलता है, तो भी इच्छा होती है ना कि हम अंडा भी खाए, हम ये भी खाए, वो भी खाए, ये सब इच्छाओं से होता है। बाकी पहले मनुष्य आत्मा को ये सब जरूरत नहीं थी। जो जहां है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी चूज करता है कि मुझे केवल फल और मूल खाने हैं, मुझे किसी प्राणी को मार के नहीं खाना है, उसमें भी चॉइस होती है। तो ये तो ह्यूमन चॉइस है ना। हमारी आदतें जो बदल गई, किसने बदली? किसी और ने नहीं बदली है, हमारी आत्मा की इच्छा ने बदली है। इतना फर्क आ गया आत्मा अभिमानी स्थिति में, सोल कॉन्शियस की स्थिति में। तो अब बताओ किसने परिवर्तन लाया? अब आप किसी और को दोष देंगे? किसी और को दोष देंगे? अगर आप बोलते हो मेरे फ्रेंड्स के कारण मैंने सिगरेट स्मोक करना शुरू किया, राइट और रॉन्ग? आत्मा की इच्छा उत्पन्न होती है और वो करता है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो गई। अब आप कितने भी नारियल चढ़ाओ क्या होगा? कितने भी उपवास रखो क्या होगा? आत्मा की चार्जिंग जब तक नहीं होगी ना, संयम आएगा। वो संयम आएगा जो आप हर साल उपवास रखेंगे, लेकिन अंदर से जो आत्मा को होता है ना, वो इतना पॉजिटिव नहीं होता है। थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, फिर बॉडी भी आपको स्ट्रगल कराता है, तो वो स्ट्रगल पॉजिटिव तो नहीं है ना। तो आप देखेंगे 8 उपवास के बाद क्या हो जाता है एकदम व्यक्ति को, भले वो स्माइल करता है, भले वो अपनी विजय की महसूसता करता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कि नहीं? नेचुरली होगा ना, क्योंकि आत्मा की एनर्जी यूज हो रही है। आप उपवास करो या आप शराब पियो, आत्मा की एनर्जी यूज हो रही है। इतनी रियलाइजेशन हमको करना पड़ेगा। केवल क्या होता है, आप अच्छा करते हो तो आपका पुण्य जमा होता है, आप बुरा करते हो तो आपका पाप जमा होता है, बस यही होता है। बाकी एनर्जी जो 50% के नीचे जा रही है वो कैसे चढ़े? बॉल तो गिरता ही रहेगा। तो ये प्रोसेस है, और जब हम आगे बढ़ते हैं, माना 12 से 12 तक जब हम उस पीरियड में आते हैं, तब क्या होता है? आत्मा की कॉन्शियसनेस बहुत 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 नेग्लिजिबल हो जाती है, और क्या रहता है, देह का अभिमान और देह का अहंकार, द एरोगेंस ऑफ द बॉडी। हम इस युग में जिसको कलयुग हमने ही बोला है, माना क्लह क्लेश का युग, तो ये क्लह क्लेश कहां है, ये क्लह क्लेश कहां है, कहां है, अपने अंदर क्लह क्लेश है। इसलिए कईयों को यहां आके नींद आएगी, इतनी शांति हो जाती है ना, सो जाते, दे आर नॉट एबल टू रिमेन अलर्ट, बहुत क्लह क्लेश है अंदर। अंदर महाभारत चल रही है, किस बात की महाभारत, कि मैं क्या था दो युगों में और आज मैं क्या हूं, मेरे ये सारे लॉसेस को मैं कैसे भरूं, मैं कैसे धनी बनूं, मैं कैसे सुखी बनूं। व्हाट अ वॉर, क्या लड़ाई है, ये लड़ाई तो इराक ईरान के बॉम्ब में भी नहीं है, जो हमारे अंदर है। महसूस करो, महसूस करो, बॉम्ब से तो खाली शरीर मरता है, और अभी आत्मा में जो हो रहा है उसका कौन क्या करेगा, खाली एक सत्संग सुन ली नहीं कुछ होता है। हमें बदलना होगा, क्यों बदलना होगा, क्योंकि हम एक्सट्रीम समय पर आ गए हैं, एक्सट्रीम। आप एक बार तो थॉट लाओ कि मैं एकदम ऑर्डर से अभी केओस तक आ गया हूं, मेरी पूरी जर्नी हो गई है चार युगों की, सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग में भी हम कहां है, शास्त्र को पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि ये तो बच्चा है, अभी 40,000 वर्ष पढ़े, आपको और दुख चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद फोर्थ वर्ल्ड वॉर चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो क्लियर है ना, कोई रोक सकता है आप में से थर्ड वर्ल्ड वॉर, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होंगी, ऐसे ही हम चले जाएंगे, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलवेज कीप द होप। लेकिन कहते हैं कि आत्मा को अपनी स्टडी पहले करनी चाहिए, इसे बाहर का जजमेंट मत लो, अंदर का जजमेंट लो कि अभी मुझे कैसा फील हो रहा है, और जो वातावरण मैंने अपने घर का बनाया है, अपने संबंधियों का बनाया है, अपने कारोबार का बनाया है, वो कैसा है, कौन सी क्वालिटी का है। ऐसा नहीं कि सब बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि परमधाम से डायरेक्ट कलयुग में आने वाले लोग होंगे, तो वो तो अपने गोल्डन स्टेट में आए हैं ना, तो वो तो सोचेंगे नहीं एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, और वो इतनी प्रेरणा देंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, क्योंकि वो परमधाम से आए हैं। लेकिन कौन से वातावरण में आए हैं, कलयुग के वातावरण में, इसलिए कलयुग के वातावरण का प्रभाव उन पर भी पड़ता जाता है, तो वो दे ट्राई द बेस्ट, मैं अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन रिजल्ट में वो अच्छे से अच्छा इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता है, उतने साधन नहीं मिलते हैं, स्ट्रगल बहुत रहती है। आज की तारीख में अगर आप अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं डॉक्टर रमेश राव, तो आपको स्ट्रगल कितनी है, करनी पड़ती है, और अच्छे बुरे लोग सबके साथ संबंध रखना पड़ता है, क्यों, उसके बिना चलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। तो करते हुए भी हमको लगता है ठीक है कर रहे हैं, बट इट्स ओके, मैं अकेले में बैठता हूं तो मुझे केवल काम करने की खुशी है, बाकी आंतरिक जो संतुष्टता होनी चाहिए वो इतनी नहीं है। वो उसका कारण है कि हमने ऐसा वातावरण आत्मा की स्थिति से बना दिया है, क्योंकि आज अगर कोई मालिक है इस दुनिया का, भगवान नहीं है, आज की दुनिया का मालिक है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसकी पूरी फैमिली, बहुत है, बड़ी फैमिली है, ये रूल कर रहे हैं आज। कहते हैं ना आजकल ऐसे बोलते हैं कि इट इज ओनली 1-2 फैमिलीज इन द होल वर्ल्ड दैट आर रूलिंग द होल वर्ल्ड, ऐसे बोलते हैं न्यूज में, ऐसे आता है 1-2 परिवार ही सारे दुनिया को चला रहे हैं, ऐसे ही विकार का परिवार दुनिया को चला रही है। आज आत्मा मालिक नहीं है, गुलाम है इन विकारों का, मुझे गुस्से के बिना नहीं रहा जाता, मुझे ईर्ष्या के बिना नहीं रहा जाता, मुझे रोने के बिना नहीं रहा जाता, मुझे अहंकार के बिना नहीं रहा जाता। ये क्या है? आत्मा गुलाम है विकारों का। मैं प्यार करना चाहती हूं लेकिन सामने वाला मुझे देगा कि नहीं, ये क्वेश्चन उठता है। तो हम बिल्कुल आयरन एज में है, और कौन सी स्टेज में है वो मुझे आप बताएंगे। आज रियल सुख या हैप्पीनेस किसको कहा जाता है किसी को मालूम नहीं है। यस और नो, देर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस छोटी छोटी बातों पर। यस और नो, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट। हर सिस्टम में आज छोटे छोटे बंटवारे हो गए हैं। यस और नो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर एक्सट्रीम करप्शन, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, कोई मूल्य है नहीं, और ये सब अपने को रियल कंटेंटमेंट कभी नहीं दे सकता लाइफ में अगर इतना करप्शन वगैरह है। यस और नो, ये टोटल इफेक्ट कहां पर दे रही है? मेरे मन पर, मेरे विचारों पर, मेरे बोल पर, मेरे कर्मों पर, इनका सारा आधार है जो हो रहा है, और वो बदल रहे हैं। इसके कारण मेरा खान पान, मेरा रहना करना पहनना, सारे चॉइसेस में बहुत फर्क आ गया। आज बच्चे अपने फादर को बर्थडे पर वाइन गिफ्ट करते, वाह क्या बात है, एंड द फादर इज फीलिंग प्राउड ऑन हिज चिल्ड्रंस चॉइसेस। माना माता पिता भी, बच्चे भी वही हाल में है। अच्छा, द टाइम एनवायरमेंट, ये सब तमोप्रदान है, टोटल अनराइटियस। हम लोग टोटल अज्ञान में जी रहे हैं। यहां आने से पहले आपने कभी भी बोला था मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं? बोला था कभी? नाम से ही अपने आप को पुकारते हो, अपने काम से ही अपने आप को रिकग्नाइज कराते हो, है ना? अपने परिवार से ही अपने रिकग्निशन है। आपकी रिकग्निशन क्या है इंडिविजुअली? मैं आत्मा हूं और ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूं। मेरा घर कौन सा है? शुद्ध धाम है, परम धाम। वहां कोई विकार नहीं है, मैं वहां से आई हूं, मेरा गांव है, मैं बहुत अच्छे गांव से आई हूं, है ना? तो अपने गांव जैसा होता है ना अपना स्वभाव, संस्कार सब। फिर आज आप अलग अलग गांव के होंगे तो अलग अलग स्वभाव संस्कार नहीं है। ऐसे हम परम धाम से आए तो हमारे संस्कार कौन से होंगे? वही है। और कहां गए? कोई छूमंतर थोड़ी हो गए हैं, है अपने अंदर ही है, सब मर्ज हो गए। अभी क्या करना है? इमर्ज करना है। और उसकी मेथड वहां पर आता है जो ये सृष्टि चक्र का हमारा लेसन है। इसमें बताते हैं कैसे हम चार युगों से परिवर्तन होते हैं। तो आप जब सेंटर जाओगे तो फिर से इस चित्र पर ध्यान से सुन करके अपने आप भी सोचना कि हमने माउंट आबू में इसके बारे में क्या सोचा था, क्या सुना था, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये है आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का चक्र, जिसको कहा जाता है सृष्टि चक्र, क्योंकि आत्मा और प्रकृति का इसमें पूरा जोड़ है, पूरी जर्नी है, इसलिए इसे सृष्टि चक्र कहते हैं। अब है समय जहां हम कलयुग के अंत में खड़े हैं। हमको अभी और कुछ नहीं चाहिए करप्शन में, दुख में। दैट मींस आत्मा चिल्ला रही है कि अब वी हैव टू चेंज, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, हमको बदलना ही होगा। और जब आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन आओ, हमारे पूरे पाप धो डालो, हे भगवान मेरे से ऐसा कोई कर्म ना हो जिसको कभी दुख मिले, हम जाके बोलते ऐसा। तो नेचुरली ये आत्मा की पुकार है, क्या वो सुनेगा? नहीं। और उसका टाइम वही होता है जब सब आत्माएं पुकारती है। When we call out to him, that is the exact time जब वो आते हैं। द्वापर से थोड़ा थोड़ा बुलावा शुरू हुआ था, लेकिन अभी तो अरे कुंभ का मेला याद आ रहा है मुझे, कितने लोग गए बताओ? करोड़ों। तो क्या परमात्मा नहीं आएंगे? इतने करोड़ों लोगों ने पुकारा, गंगा में स्नान करते हुए ऊपर हाथ जोड़े, तो परमात्मा का आने का समय एग्जैक्टली ये है जब सब आत्माएं पुकारती है अपनी अपनी रीति से। चर्च में कम जाएंगे, मंदिर में कम जाएंगे, गुरुद्वारे में कम जाएंगे या कहीं भी मस्जिद में कम जाएंगे, लेकिन अंदर की पुकार बहुत, जब अंदर की पुकार बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो टाइम होता है जब परमात्मा अपने बच्चों के बुलावे पर आते हैं। तब तक हम है ना मंदिर में जाके केवल अपने लिए मांगते हैं, परिवार सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, मेरे को ये मिले, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन जब रियल आत्मा की पुकार आती है ना, तब परमात्मा को आना होता है। तो परमात्मा क्यों आए हैं? हम सब की पुकार पर। तो जब हम सब की पुकार पर परमात्मा आए, तो क्या हम उनको इग्नोर करेंगे, उनको निग्लेक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। अब भले आप बाहर जाओगे तो कलयुगी है, लेकिन हमारे इधर आत्मा के अंदर कौन सा समय चल रहा है अभी? संगम युग। संगम, बुराई और अच्छाई का संगम, आत्मा और परमात्मा का संगम। चक्र के रात का चक्र के दिन के साथ संगम। हम ना दिन में है ना हम रात में वापस जाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों के संगम पर खड़े। जैसे आप बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े रहेंगे तो आपको दोनों साइड दिखाई देगा ना, ऐसे अभी हम ऐसे समय पर है जो हमको पूरा कलयुग भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा चेंज आने वाला है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं भी होती है तो भी एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो वो चेंज, इसीलिए हम कहते हैं डायमंड युग। वो तो गोल्डन युग था सत्युग, पर ये तो डायमंड युग है। इसमें हमारे अंदर जितने भी फ्लॉ है ना, कोयला किससे, डायमंड किससे बनता है? कोयले में से। तो हम कोयले से फिर से एक शुद्ध डायमंड बनने का ये समय चल रहा है। और अगर आप अपने आप में कमिट नहीं करोगे तो ठीक है, आपके सेकंड टीचर तो है प्रकृति, वो आपको संभाल लेगी, वो आपके लिए जो भी करना होगा कर लेगी। लेकिन पहला टीचर है परमात्मा, जो एक पावर हाउस का काम करता है, जहां से आत्मा फिर अपने आप को रिचार्ज अपने आप खुद करती है, विलिंगली करती है, किसी और पर निर्भर नहीं है, वो खुद करना चाहती है। और इसीलिए उसे संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ, पुरुष कौन है? सारे पुरुष हाथ खड़ा करें। अरे पुरुष माना आत्मा, प्रकृति और पुरुष का खेल है ये। तो अब बताओ, पुरुष हाथ खड़ा करो, सभी सभी पुरुष है आत्मा, समझा? तो आत्मा जो एफर्ट्स करती है अपने विकारों को परिवर्तन करने के लिए, कोई गायब तो होता नहीं है, जो मर्ज हो गया है उसको इमर्ज करना है, जो इमर्ज हो गया उसको मर्ज करना है। तो अपने विकारों का परिवर्तन, अपनी वैल्यूज को अपने अंदर फिर से इमर्ज करना, मैं गुणी आत्मा हूं, मैं सत्य आत्मा हूं, मैं स्वच्छ आत्मा हूं, मैं मधुर आत्मा हूं, अपनी वैल्यूज को वापस रीजेनरेट करना और फिर उसको स्प्रेड करना वाइब्रेशन। तो पांडव कितने थे, कौरव कितने थे, किसकी जीत हुई? तो ठीक है ना भाई, प्रूफ तो अपने पास है कि अगर हम विकारों को परिवर्तन करने वाले बने और अगर हम केवल पांच है तो भी जीत हमारी है। तो इस कॉन्फिडेंस से आरंभ करो कि भले दुनिया जो भी है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है और मुझे परमात्मा से अपने आप को चार्ज करना है। तो यहां पर परमात्मा का रोल आता शुरू होता है। ये टाइम, एनवायरमेंट सब हमें कह रहे हैं बदलो 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 बदलो, सब पुकार रहे हैं, तो हमको सबकी आवाज सुननी है, सबको महसूस करना है। इतने सेल्फिश तो नहीं बनना है ना, जो हम केवल अपने लिए जिए और कुछ भी होता रहे कोई बात नहीं। अभी देखो स्वच्छता का आंदोलन चला तो सबको कितना माना अंदर से आता था कि कचरा देखा तो डाल दूं, फिर थोड़े समय के बाद जैसे थे वैसे, है ना। तो हमको है ना जागृत होने को चाहिए, फिर थोड़े समय के लिए जागृत होके फिर पुरानी नींद में सो जाते। अभी वो समय नहीं है, अभी हमें बिल्कुल जागृत होना है। उसमें भी पिछले संस्कार भले काम करे पर हमें उसको भी बदलना है। कैसे? मेडिटेशन, आत्मा की चार्जिंग। आत्मा की चार्जिंग जितना करेंगे उतनी अपनी आदतें, बिहेवियर, एटीट्यूड, स्मृतियां सब कुछ बदलने लगेगा। नाउ द वर्ल्ड क्लॉक इज ओनली फ्यू मिनट्स अवे फॉर वन साइकिल टू बी ओवर बट अ न्यू साइकिल टू बी स्टार्टेड। और न्यू साइकिल में स्टार्ट होने से पहले एक बार हम सब अपने घर जाएंगे, रिटर्न जर्नी है ना। रिटर्न टिकट सबके पास, कोई सिंगल टिकट से तो नहीं आया ना, तो बस अभी समय है रिटर्न जर्नी परम धाम के लिए। तो खुशी खुशी जाना है या दुखी होके जाना है, या हमको जाना ही नहीं है? नहीं, हमको अच्छे के लिए जाना है। हम जाएंगे तो नई दुनिया आरंभ होगी, और नई दुनिया ऑर्डर वाली आरंभ होगी, क्योंकि भगवान आए हैं आत्मा रूपी बॉल को फिर उठा के उछालने के लिए। तो आप वो बॉल बनना चाहेंगे परमात्मा के हाथ में, है ना, जो आपको उछाले और आप वापस अपने ऑर्डर के लेवल पर मेडिटेशन के द्वारा आ जाओ। तो वही ये समय है। तो यहां दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि ये जो वर्ल्ड साइकिल है ये अविनाशी है, इसलिए अभी भी अविनाशी रीति से ही काम करेगा। इसका मतलब 5000 साल के बाद फिर आप इधर होंगे और हम सब मिलेंगे। कोई लास्ट मिनट पे ज्वाइन हुआ आने के लिए प्लीज हाथ खड़ा करें, जो लास्ट मिनट पे ज्वाइन हुआ आने के लिए। पर ये लास्ट मिनट नहीं है, आप आए ही थे 5000 साल पहले। अभी आप सोच रहे हो कि आप एक से लास्ट मिनट ज्वाइन हुए, पर यू वर डेस्टिन टू कम लाइक 5000 इयर्स बिफोर। तो ये अविनाशी रूप से चक्र चलता है। अब आपका प्रश्न आएगा आएगा और आएगा ही, फिर मुक्ति क्या है? हाँ, देखो देखो स्मृति आ रही है, स्मृति आ रही है 5000 साल की, है ना। कईयों को आती है, यहां आते हैं तो कई कहते हैं कि मैंने स्वप्न में भी ये देखा हुआ है, और मैंने पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहां आई हुई हूं। जी जी, ये सॉन्ग भी मैंने सुना है। तो ऐसे स्मृतियां आती है, और ये आपका इंटरनल प्रूफ है, एक्सटर्नल प्रूफ नहीं है, इंटरनल प्रूफ है। माना आपको अगर प्रूफ मिल गया ना तो आपका निश्चय कभी हिलेगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं। आप भले कितने भी लेक्चर सुन के जाओ, जिस दिन आपको इंटरनल प्रूफ मिल जाएगा ना, फिर आपका निश्चय कभी नहीं हिलेगा। तब तक आप बोलोगे मैं कलयुग में हूं, नहीं तो आप बोलोगे नहीं मैं संगम पे हूं, मैं जागृत हो गया हूं, अब मुझे अपनी बैटरी को फुल्ली जेनरेट वापस करनी है, तो ये मेरा समय है। तो कितना भी दुख अशांति हो, लेकिन संकल्प ये है कि मैं आत्मा परिवर्तन पुनः हो रही हूं। इस लेसन का लास्ट एंड फर्स्ट थॉट है, अब मैं आत्मा पुनः परिवर्तन हो रही हूं, और मेरा चार्जर है शिव बाबा परमात्मा, जो मुझे एनर्जी दे रहा है, और मैं आत्मा पुनः परिवर्तन हो रही हूं। कैसा लगता है ना, कोई आईसीयू में एकदम वेंटिलेटर पर होता है तो, और उसके बाद जब वो उसमें से बाहर आता है तो कैसा लगता है? कोमा में होता है, उसके बाद बाहर आता है तो कैसा लगता है? नया जीवन मिला। ऐसे यहां से आप नया जीवन पुनः ऑर्डर में आने के लिए, पुनः संपन्न संपूर्ण बनने के लिए ही यहां आए हो, और यही संकल्प आपको ले जाना है। दूसरी बात याद रखना ये साइकिल किसी ने भी नहीं बनाई है, भगवान ने भी नहीं। केवल इस साइकिल का ज्ञान परमात्मा को है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये प्रकृति का ऑटोमेटिक साइकिल है, नेचुरल, और हम इस नेचुरल चीज को खाली समझ रहे हैं। इसको कहते ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, कि भाई हम जिस साइकिल से घूम रहे हैं उसकी हमको नॉलेज ही नहीं है, है ना। तो साइंस वाले क्या करते हैं, रिसर्च कर करके निकाल के देते हैं थियरी, पीएचडी करेंगे, उसकी पूरी थीसिस बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके सामने ही 2 साल के बाद कोई और थीसिस निकालेगा और उसको रिजेक्ट करके खुद का बोलेगा कि अरे मैंने तो ये ढूंढा है। पर परमात्मा ऐसा नहीं है, वो नेचुरली ज्ञान का सागर है, वो जो सुनाता है वो सत है, सत माना अविनाशी ट्रूथ। इसलिए ये साइकिल जो है किसी ने भी क्रिएट नहीं की है, इसलिए भले कितने भी बॉम्ब गिर जाए, कितने भी फ्लड आ जाए, कितनी भी आग लगे, इस चक्र को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ये पृथ्वी कहीं नहीं जाएंगी, भले उसमें बहुत महापरिवर्तन आएगा, क्योंकि सत्युग का वातावरण आना चाहिए ना, इसीलिए महापरिवर्तन आएगा, लेकिन इस पृथ्वी को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति को भी मां कहते हैं ना, धरती को क्या कहते हैं, मां तो हमेशा रहेगी, है ना। तो इसलिए ये सब अविनाशी बातें हैं। जब आप अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे ना, तब आपको फील होगा। मेडिटेशन करें 3 मिनट लास्ट, क्या, हाँ, मुक्ति ना इसका सब्जेक्ट है, पर आज नहीं ले पाएंगे, हम लेंगे। पर मुक्ति माना ही, एक लाइन में बताऊं तो परम धाम, मुक्ति एक लाइन में बताऊं तो परम धाम, एक शब्द में, मैं मुक्ति में जाऊंगी, माना मैं आत्मा परम धाम अपने घर जाऊंगी, मैं सत्युग में आऊंगी, माना मैं आत्मा एकदम जीवन मुक्त में आऊंगी, नो बंधन, और कलयुग में आना माना मैं आत्मा जीवन बंद में आई, और सब जीवन बंद के समय ही मुक्ति का प्रयास करते हैं, और लास्ट में परमात्मा हमें सच्चा वो रास्ता दिखाते हैं परमधाम जाने का। और हम मेडिटेशन में रोज परमधाम जाते हैं, अपने घर में जाना कोई मुसीबत की बात है क्या, बिल्कुल नहीं। फिजिकली घर जाने में तो भी ट्रैफिक निड़ता है, पर जब परम धाम आत्मा को जाना है तो ट्रैफिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वेरी इजी टू गो टू परम धाम, ठीक है। तो मुक्ति माना क्या, अपना घर जहां आत्मा मुक्त रहती है। सदा मुक्ति जो बोलते हैं ना, उसका हम थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। पर एक शब्द मुक्ति माना आत्मा का घर वापस जाने का टाइम, और कोई आत्मा ड्रामा में बीच में वापस घर नहीं जाती है, ये लॉ ही नहीं है। ऑर्डर से केओस तक पहुंचना पड़ेगा ना, फिर ही वापस ऑर्डर आएगा। फिर कितनी भी महान प्योर आत्मा कोई भी हो, सबको ऑर्डर से केओस तक जाना ही है। इसलिए बीच से कोई परमधाम नहीं जा सकता, लेकिन अंत में जब वो 2 कांटे मिलेंगे ना 12 बजे पर, तब हम सब परमात्मा के साथ घर वापस जाएंगे। एंड दैट इज द एंड ऑफ वन साइकिल ऑफ ह्यूमंस, और सभी प्राणी पशु पक्षी सभी का, पर हम अभी अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल आपने सुना, ये कोई पीएचडी नहीं की है भाई, ये कोई थीसिस नहीं लिखी है, ये परमात्मा ज्ञान के सागर उन्होंने सत्य बताया है बस। और कितना आप विचार करो, हमारे फाउंडर को कितना मुश्किल हुआ होगा समझने के लिए, क्योंकि परमात्मा निराकार है, उन्होंने तो ये सारे चित्र साक्षात्कार में ही दिखाए, कितना टाइम लगा होगा पूरा समझने के लिए। इसलिए 14 साल कराची में वो लोग बाहर निकले ही नहीं, एक ही कैंपस में डीप मेडिटेशन, जिससे ये सब बातें समझ में आए। फिर जब इंडिया में आए फिर सबको भेजा कि अभी जो आपके अंदर समाया है ज्ञान, वो आप शिव बाबा को याद करके साथ में रख के सबको सुनाना। इट्स नॉट आर प्रॉपर्टी, ये ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है, ओरिजिनली परमात्मा की प्रॉपर्टी है। और वो कभी आपको कोई थियरी, आपको कोई फिलॉसफी नहीं सुनाएंगे। बहुत लोग हैं दुनिया में भरे पड़े हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा का मिलन करना है, परमात्मा से प्राप्त करना है, तो बस उनके साथ आप कहां भी मिलन करो, सेंटर पे करो, रास्ते में करो, गार्डन में बैठ के करो, कहीं भी करो, मिलन है माना आप संगम युग पर है। अपने को आत्मा समझ रहे हैं, आप संगम युग पर है, तो आपको नॉलेज धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि है ना अंदर, मर्ज है, आप केवल इमर्ज करेंगे। ओके, हम अभी मेडिटेशन करें, उसके बिना नहीं जा सकते। तो वापस चक्र पर ले जाती हूं, एक मिनट इसको। इसको फुल स्क्रीन में है, ओके, चलिए। अब आपने आवाज और पिक्चर्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसके आधार से समझा, अब सब छोड़ दो, कुछ नहीं है आपके पास। हॉल में जो बैठे वो भी नहीं है, जो सोफा पे बैठे वो भी नहीं है। धीरे धीरे सब कैंसिल करो, जिस शरीर में बैठे हैं वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, अभी थोड़े सेकंड्स के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। तो उसे प्यार से रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें ना थोड़े समय के लिए शांत रहना, स्थिर रहना, थोड़ा अलर्ट होकर बैठना। अब मैं अपने स्वरूप की ओर जा रही हूं, दो आंखों के पीछे, मस्तिष्क के आगे, दो कानों के मध्य में, अपनी व्यक्तिगत कमरे में, बिल्कुल व्यक्तिगत, इसमें कोई आपको पहचानता नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपने को पहचानना अभी आरंभ किया है। ये कमरा केवल प्रकाशित है, दिन रात वाला प्रकाश भी नहीं, एक अलग ऊर्जा है। शास्त्रों में इस ऊर्जा को नाम दिया गया है आत्मा, सोल, पावर, एनर्जी, लाइट, तीसरा नेत्र, द थर्ड आई, मैं, एक चमकते हुए सितारे की तरह प्रकाश का रूप हूं, ऊर्जा का रूप हूं। धीरे धीरे आंखें खुले और खुली आंख में महसूस करो कि ब्रेन के आगे, दोनों आंखों के पीछे मैं बैठा हूं, मैं आत्मा, जो ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूं, बिल्कुल ऑर्डर में रहने वाली। और मैं आत्मा उस घर का निवासी हूं जो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। चलो हम चलते हैं इस हॉल से भी पार, अपने को आत्मा समझते हुए केवल ऊर्जा स्वरूप होकर आकाश की ओर। बादलों से पार, केवल ऊर्जा स्वरूप। अब अवकाश से होते हुए सारे ग्रह को साक्षी होकर देखते हुए, उससे भी पार जहां एक श्वेत प्रकाश का आध्यात्मिक लोक महसूस होता है, ये फरिश्तों का धाम है। इसे अव्यक्त लोक भी कहते हैं। हम इससे भी पार जाएंगे जहां चारों ओर अनहद रूप से आत्मा के समान ही प्रकाश है, जो चारों ओर अनहद रूप से फैला हुआ है, बिल्कुल साइलेंस की दुनिया, कोई आवाज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। हम आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में एक परम प्रकाश की ओर जाकर हमारे परम पिता परमात्मा, जो भी हमारे समान निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा के पास हम स्थित हो जाते हैं, उनके सारे गुणों की शक्तियों की किरणें हम पर उतर उतर कर आ रही है, और उसी लाइट में हम नीचे सृष्टि का चक्र महसूस करते हैं। परम धाम तो अपना घर है, रेस्ट हाउस, और नीचे हमारी ऑफिस है, कर्म भूमि, गेस्ट हाउस। हम धरती पर जहां भी रहते हैं वो हमारा गेस्ट हाउस है, और वहां से हम अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं और वापस गेस्ट हाउस में आते हैं। हम सचमुच यात्री हैं 5000 वर्ष के। अब समय है वापस अपने इस घर में लौट कर आने का। पूरा चक्र पूरा कर हम वापस अपने रेस्ट हाउस में जाएंगे, ऐसे जैसे अभी हम स्थित है। बिल्कुल फ्री, कोई बंधन नहीं, शरीर का भी बंधन नहीं। डीप साइलेंस में आत्मा एक बीज के रूप में सब कुछ अपने में समाये हुए 5000 वर्ष की स्टोरी अपने अंदर समाये हुए बैठी है। इसी स्मृति में बैठिए, स्मृति का स्विच ऑन करें कि हमें वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जाना है। शिव बाबा से छुट्टी लेके वापस हम परमधाम से श्वेत प्रकाश के अव्यक्त लोक में आएंगे, और वहां से अवकाश की ओर, यही अच्छी फीलिंग सारे ग्रह को देते हुए फिर आकाश की ओर, फिर बादलों को पार करते हुए, फिर माउंट आबू पर, फिर ज्ञान सरोवर में, फिर ये ऑडिटोरियम में, अब फिर से अपनी सीट पर, अपने शरीर में, दो आंखों के पीछे अपने कमरे में आ जाएं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। जो अंधकार को चीर दे वो उजाला है, जो अभिमान को तोड़ दे वो आत्मज्ञान है, और जो मुक्ति, बंधन से मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ ले जाए वो परमात्मा है। आज उनसे हुआ हमारा संगम है, सभी मिल लिए, आज उनसे हुआ हमारा संगम है। और हमें ये पक्का स्मृति है कि हम 5000 साल पहले भी इस घर में बैठे थे, आज हैं, और वी आर नॉट न्यू। हम इस घर में, हमारे पिता के घर में, हमारे अपने आबू घर में आए हुए हैं, और हमेशा हमेशा आते रहेंगे, है ना? पक्का पक्का कि कुछ नया है? नया नहीं है ना? यस। थैंक यू क्रीना बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत अच्छी बातें हमें पक्का करा दिया। शांति।